समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार, हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के ठीक 4:30 बजे हैं और ये समय है आपके अपने न्यूज मैगजीन कार्यक्रम परिक्रमा का, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं वो सारी जानकारी जिनका आपसे है सरोकार। श्रोताओं, आधे घंटे के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार होंगे, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे कि क्या कुछ है खास उनके पास। इसके अलावा खेल गतिविधियों पर भी रहेगी हमारी नजर और हम करेंगे उन विशिष्ट व्यक्तियों को भी याद जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन। श्रोताओं, परिक्रमा के इस अंक के साथ मैं हूं आकर्षिता सिंह और मेरे साथ है मेरी को होस्ट रेशमा तिवारी। रेशमा, आपको भी मेरा नमस्कार।
नमस्कार आकर्षिता, एंड हेलो एंड गुड आफ्टरनून लिसनर्स, यू आर ट्यून्ड इन टू परिक्रमा ऑन एफएम गोल्ड एट 100.1 मेगाहर्ट्ज़। And listeners, for you, we have a selection of news, our discussion segment Dateline India, reports, capsules, tributes and much more. But we begin with the news headlines first. Prime Minister Narendra Modi urges people to celebrate upcoming festive season with Swadeshi products to give wings to the dreams of young entrepreneurs.
आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने लोगों से गांधी जयंती पर खादी उत्पाद खरीदने की अपील की ताकि वोकल फॉर लोकल अभियान को बढ़ावा मिल सके।
प्राइम मिनिस्टर हेल्स टू नेवी ऑफिसर्स सेलबोट अचीवमेंट, सेज देयर सक्सेस विल इंस्पायर यूथ स्पेशली गर्ल्स ऑफ द कंट्री।
तमिलनाडु में करूर भगदड़ की घटना में टीवीके पार्टी के महासचिव और 4 अन्य के खिलाफ मामला दर्ज, घटना में 39 लोगों की मौत।
External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar says India will always maintain its freedom of choice amid global tariff volatility and uncertain market access.
और एशिया कप 2020 क्रिकेट के खिताबी मुकाबले में आज शाम दुबई में भारत और पाकिस्तान आमने सामने होंगे।
And now it's time for our segment Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at national or global level. Today we'll talk about khadi, vocal for local. We are here to talk about a fabric that's more than just cloth. It's a symbol of India's freedom, self-reliance and pride. Khadi, the fabric woven just not with cotton but with the threads of sacrifice, simplicity and Swadeshi spirit.
हथकरघा क्षेत्र देश की गौरवशाली सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक और आजीविका का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। प्राचीन काल से ही भारतीय हथकरघा सांस्कृतिक पहचान, स्थायित्व और आर्थिक आत्मनिर्भरता का प्रतीक रहा है।
प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टुडे अर्ज्ड पीपल टू सेलिब्रेट द अपकमिंग फेस्टिव सीजन विद स्वदेशी प्रोडक्ट्स एंड मेक वोकल फॉर लोकल देयर मंत्र। Sharing thoughts in his Man Ki Baat program on Akashvani, Mr. Modi called upon people to make the resolve of buying products that are produced in the country.
आने वाले दिनों में एक के बाद एक त्योहार और खुशियां आने वाली है। हर पर्व पर हम खरीदारी भी खूब करते हैं और इस बार तो GST बचत उत्सव भी चल रहा है। अगर हम ठान ले कि इस बार त्योहार सिर्फ स्वदेशी चीजों से ही मनाएंगे तो देखिएगा हमारे उत्सव की रौनक कई गुना बढ़ जाएगी। वोकल फॉर लोकल को खरीदारी का मंत्र बना दीजिए, ठान लीजिए हमेशा के लिए जो देश में तैयार हुआ है वही खरीदेंगे।
और रेशमा, स्वदेशी उत्पादों को खरीदने से परिवारों में तो खुशी आएगी ही आएगी और त्योहारों का सीजन चल रहा है तो अपने सभी श्रोताओं से हम ये अपील कर सकते हैं कि वो जो कुछ भी खरीदें खादी से संबंधित या स्वदेशी निर्मित खरीद सकते हैं। इससे क्या होगा कि कारीगरों के परिश्रम का भी सम्मान होगा और युवा उद्यमियों के सपनों को भी पंख भी लगेंगे और इससे हम उनको सपोर्ट कर सकते हैं एक तरीके से।
राइट।
और 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि महात्मा गांधी हमेशा स्वदेशी अपनाने पर बल देते थे और खादी उनमें सबसे प्रमुख थी। श्री मोदी ने सभी से 2 अक्टूबर को एक खादी उत्पाद खरीदने और उसे सोशल मीडिया पर वोकल फॉर लोकल हैशटैग के साथ शेयर करने का आग्रह किया।
बीते 11 साल में खादी के प्रति देश के लोगों का आकर्षण बहुत बढ़ गया है। पिछले कुछ वर्षों में खादी की बिक्री में बहुत तेजी देखी गई। मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि 2 अक्टूबर को कोई न कोई खादी प्रोडक्ट जरूर खरीदे। गर्व से कहें ये स्वदेशी है। इसे सोशल मीडिया पर हैशटैग वोकल फॉर लोकल के साथ शेयर भी करें।
And how can we Indians forget the history of khadi? Khadi was once a silent yet powerful weapon during India's freedom struggle. Mahatma Gandhi promoted khadi to boycott British textiles. It wasn't just about wearing local cloth. It was about asserting our independence and dignity. Spinning the charkha became a symbol of resistance. Every thread was a thread of freedom. The khadi movement was a direct challenge to British rule. Promoting an economy of self-sufficiency by encouraging Indians to boycott foreign-made goods and instead produce and wear khadi. And when Indians wore khadi, they weren't just wearing cloth, they were wearing courage.
जी हाँ, आज भी खादी बेहद प्रासंगिक है। जानते हैं क्यों? क्योंकि खादी ग्रामीण कारीगरों, खासकर महिलाओं को सशक्त बनाती है। जब आप खादी खरीदते हैं तो आप हथकरघा बुनकरों का समर्थन करते हैं और स्थानीय रोजगार को बढ़ावा देते हैं। और रेशमा, अगर बात करें सस्टेनेबिलिटी की कि किस तरीके से इससे कोई प्रदूषण भी नहीं होता, एक तरीके से आजकल के जो हम कपड़े पहनते हैं उनमें से बहुत ढेर सारे ऐसे कपड़े होते हैं जिनसे प्रकृति को बहुत नुकसान पहुंच रहा है, लेकिन हमारी जो खादी है या हथकरघा है, इससे जुड़े जो उत्पाद हैं उनको पहनने से एक तो इंडियन जो टेम्परेचर है, क्लाइमेट है, उसको भी वो सपोर्ट करता है। जैसे कि कॉटन हुआ, सूती कपड़े हुए, और उससे हम और अच्छा महसूस भी करते हैं और हमारी प्रकृति को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। तो वास्तव में खादी आत्मनिर्भर भारत के सर्वोत्तम उदाहरणों में से एक है। फैशन रनवे की अगर बात करें तो फैशन रनवे से लेकर कॉलेज परिसरों तक खादी अब आकर्षक, आरामदायक और समकालीन है। और हम देख रहे हैं आजकल बहुत ढेर सारे डिजाइनर्स जो है, फेमस डिजाइनर्स, वो खादी को अपने उस पे रनवे पे भी ला रहे हैं।
दे आर प्रमोटिंग खादी। यस, एंड व्हेन वी वेयर खादी टुडे, वी आर नॉट जस्ट ऑनरिंग आवर पास्ट, वी आर आल्सो शेपिंग a sustainable and proud future, as Akarshita just mentioned. So listeners, khadi has been an important part of India since time immemorial. The spinning and weaving of khadi provide crucial employment and income opportunities for rural artisans, fostering entrepreneurship and strengthening the rural economy.
खादी एक टिकाऊ कपड़ा है जिसे न्यूनतम मशीनरी से बनाया जाता है और ये एक सरल, अधिक बुनियादी जीवन शैली को बढ़ावा देता है जिससे लोगों को और पर्यावरण दोनों को लाभ होता है, जैसा कि हमने कहा। और खादी में अपनी जो बोला ना, ब्रीथिंग कैपेसिटी है, सांस लेने की क्षमता है। हम टेरिकॉट कोई पहनते हैं या कोई और कपड़े पहनते हैं तो उसमें क्या होता है कि जो हमारी शरीर की जो एक ब्रीथिंग होती है वो नहीं हो पाती उन कपड़ों से। तो इसमें जो खादी होती है उसमें नमी सोखने की क्षमता के कारण गर्मियों में ये शरीर को ठंडा रखती है और सर्दियों में गर्म रखने की अनूठी क्षमता होती है। इसमें इसकी प्राकृतिक जो संरचना होती है इसे त्वचा पर कोमल बनाती है और सबसे संवेदनशील त्वचा के लिए भी उपयुक्त बनाती है। तो अगर रेशमा हम बात करें तो कहीं ना कहीं ये हमारे परिवेश से भी जुड़ी हुई है और ये हमारे आत्मसम्मान से भी जुड़ी हुई है। तो हमें इस त्योहार कोई ना कोई एक खादी का प्रोडक्ट तो खरीदना ही चाहिए।
कोई ना कोई बहाना बना
जी।
प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एक्सप्रेस्ड हैप्पीनेस दैट हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट सेक्टर इज आल्सो विटनेसिंग सिग्निफिकेंट चेंजेस।
खादी की तरह ही हमारे हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट सेक्टर में भी काफी बदलाव देखने को मिल रहा है। आज हमारे देश में ऐसे कई उदाहरण सामने आ रहे हैं जो बताते हैं कि अगर परंपरा और इनोवेशन को एक साथ जोड़ दिया जाए तो अद्भुत परिणाम मिल सकते हैं। जैसे एक उदाहरण तमिलनाडु के याज नेचुरल्स का है। यहाँ अशोक जगदीशन जी और प्रेम सालवाराज जी ने कॉरपोरेट नौकरी छोड़ एक नई पहल की। उन्होंने घास और केला फाइबर से योगा मैट बनाए, हर्बल रंगों से कपड़े रंगे और 200 परिवारों को ट्रेनिंग देकर उन्हें रोजगार दिया।
श्री मोदी ने झारखंड के आशीष सत्यव्रत साहू का भी जिक्र किया जिन्होंने जोहार ग्राम ब्रांड के जरिए आदिवासी बुनाई और परिधानों को वैश्विक स्तर पर पहुंचाया। उन्होंने कहा कि श्री साहू के प्रयासों से दूसरे देशों के लोग भी झारखंड की सांस्कृतिक विरासत से परिचित हुए हैं।
प्राइम मिनिस्टर आल्सो गेव द एग्जाम्पल ऑफ स्वीटी कुमारी फ्रॉम मधुबनी डिस्ट्रिक्ट इन बिहार।
बिहार के मधुबनी जिले की स्वीटी कुमारी जी ने, उन्होंने भी संकल्प क्रिएशन शुरू किया है। मिथिला पेंटिंग को उन्होंने महिलाओं की आजीविका का साधन बना दिया है। आज 500 से ज्यादा ग्रामीण महिलाएं उनके साथ जुड़ी हैं और आत्मनिर्भरता की राह पर है। सफलता की ये सभी गाथाएं हमें सिखाती हैं कि हमारी परंपराओं में आय के कितने ही साधन छिपे हुए हैं। अगर इरादा पक्का हो तो सफलता हमसे दूर नहीं जा सकती।
तो आइए भारत में निर्मित स्थानीय भारतीय उत्पादों और वस्त्रों को खरीदने और उनका समर्थन करने का हम संकल्प लें और समर्थन करें भारत के स्थानीय कारीगरों का।
Indeed, the path to a developed India in 2047 passes through self-reliance, and the foundation of Atmanirbhar Bharat lies in being vocal for local.
और अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास क्या विशेष है।
The Navaratri festival, which started on September 22 in Tamil Nadu, is a vibrant celebration honoring the divine feminine energy of goddess Durga, Lakshmi and Saraswati, symbolizing power, wealth and wisdom respectively. More from our correspondent.
Tamil Nadu celebrations are marked by a meticulous arrangement of golu or kolu, a tiered display of dolls depicting gods, goddesses and daily life scenario depicting mythological themes, environment and space. The dolls are often passed down through generations of generations and are arranged on a makeshift staircase. The arrangement follows themes like the 10 incarnations of Vishnu or Indian epics, and golu arrangements will be witnessed by neighbors, friends and family who exchange gifts and traditional snacks. There's a strong emphasis on performance arts, with traditional dances like Bharatanatyam and Mohiniyattam performed in temples and public spaces. In Madurai, the Meenakshi Amman temple hosts a grand celebration with the Golu Mandabam, where goddess Meenakshi is decorated in 9 different forms. In Muttaraman temple, situated in Kulasekarapattinam at Thoothukudi district, the grand Dasara festival started with flag hoisting. This 10-day celebration honors goddess Muttaraman, a form of divine mother, and attracts thousands of devotees from across Tamil Nadu and beyond. The festival commemorates the victory of goddess Muttaraman over the buffalo demon Mahishasura, symbolizing good triumphing over evil. Shanti Ramesh for Parikrama from Akashwani, Tiruchirappalli.
On the first day of 5-day-long Durga Puja festivities, Kolkata has truly turned into the city of joy, ready to soak in the colors of devotion, art and cultural celebration. More from our correspondent.
Organizers across the city have crafted diverse and thought-provoking themes for their pandals, ranging from social awareness and environmental concerns to reviving folk traditions and celebrating Bengal's cultural heritage. An organizer has chosen a strikingly patriotic theme, Amader Desh, Amader Durga, or Our Country, Our Durga, which pays homage to women's participation in India's freedom struggle, particularly during the Quit India movement. The pandal will depict Devi Durga through the lens of brave women freedom fighters who fought with determination against colonial oppression, many of whom sacrificed their lives for the country's independence. Another commemorates the Pahalgam incident and the glory of Operation Sindoor. Some have opted for a cinematic and cultural theme with Pother Panchali. Shushmita Mondol, Akashbani, Kolkata.
Assam is home to 34 of the 130 bamboo species found in the country and one of the largest bamboo producing states of India. To boost the bamboo-based economy of the state and India's green energy mission, Prime Minister Narendra Modi inaugurated the country's first bamboo-based biorefinery at Numaligarh in Golaghat district recently. More from our correspondent.
Country's first bamboo-based biorefinery at Numaligarh in Golaghat district is a joint venture of Numaligarh Refinery Limited and Finnish companies Fortum and Sempolis. The refinery marks India's first attempt to produce fuel-grade ethanol from bamboo biomass. This initiative is aligned with India's target of 20% ethanol blending in petrol by this year. The facility will produce 49,000 tons of bioethanol annually alongside 11,000 TPA of acetic acid and 90,000 TPA of furfural. It sources bamboo directly from nearly 3,000 farmers across the state, creating a value chain estimated at Rs. 200 crore every year. It is not only boost the supply of ethanol for the transportation segment, but also open more opportunities for deployment of technologies related to the production of value-added products and chemicals from byproducts of the biorefinery. Aminul Haqzuddar, Akashbani News, Guwahati.
और अब चलते हैं खेल के मैदान में और जानते हैं वहां की हलचल। एशिया कप T20 क्रिकेट के फाइनल में आज भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 8 बजे से खेला जाएगा। एशिया कप के 41 वर्ष के इतिहास में ये पहला मौका होगा जब दोनों टीमें फाइनल खेलेंगी। भारत अब तक 8 बार एशिया कप का खिताब अपने नाम कर चुका है। इस बार के टूर्नामेंट में दोनों टीमें तीसरी बार आमने सामने होंगी। अब हम याद करेंगे उन महान स्वतंत्रता सेनानियों को और बात करेंगे उन महान व्यक्तियों की जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन।
टुडे इज द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ शहीद भगत सिंह। भगत सिंह वाज बोर्न ऑन 27th ऑफ सितंबर 1907 टू अ सिख फैमिली इन पंजाब। एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ हिज फादर किशन सिंह वाज इन जेल फॉर फाइटिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश रूलर्स।
हिज फादर वाज अ फॉलोअर ऑफ महात्मा गांधी। And after Gandhiji called for boycotting government-aided institutions, Singh left school and enrolled in the National College at Lahore, where he studied European revolutionary movements. Bhagat Singh's parents tried to get him married. Bhagat Singh said that, "If I married in slave India, my pride shall only be death."
He left home for Kanpur and joined Hindustan Socialist Republican Association. In 1926, Bhagat Singh founded the Naujawan Bharat Sabha. And a year later, and in May 1927, he was arrested for allegedly being involved in the Kakori conspiracy. He was released several weeks later and began to write for various revolutionary newspapers.
In 1928, Lala Lajpat Rai had led a procession to protest against the arrival of the Simon Commission. The police resorted to a brutal lathi charge in which Lala Lajpat Rai was severely injured and later succumbed to his injuries. To take revenge for the death of Lala Lajpat Rai, Bhagat Singh and his associates plotted the assassination of James A. Scott, the then superintendent of police. However, the revolutionaries mistakenly killed J.P. Saunders. The incident is famously known as the Lahore Conspiracy Case of 1929.
In April 1929, Bhagat Singh and an associate bombed the Central Legislative Assembly in Delhi to protest implementation of the Public Safety Bill. The bombs they carried allegedly were not intended to kill, but to scare. And in fact, no one was killed, though there were some injuries. The bombers planned to get arrested and stand trial so they could further promote their cause.
However, Bhagat Singh was rearrested for the murder of J.P. Saunders and for bomb manufacturing in the Lahore conspiracy case. While awaiting trial, he led a hunger strike in prison. He was found guilty in this case and was hanged on the 23rd of March 1931 in Lahore along with Sukhdev and Rajguru.
Every year, 23rd of March is observed as Martyrs' Day. As a tribute to freedom fighters, Bhagat Singh, Sukhdev and Rajguru. And it was on this day in 1837, the last Mughal king, Bahadur Shah Zafar, ascended the throne at the age of 62.
Bahadur Shah was a poet and an artist. By the time Bahadur Shah ascended the throne, the area under Mughal rule had reduced to Delhi only. Bahadur Shah was also known to be a tolerant and peace-abiding ruler, and his religious neutrality is also said to be a reason the sepoys of 1857 revolt declared him as their king upon reaching Delhi from Meerut in 1857.
The outbreak of the 1857 revolt in Delhi culminated when on 19th of September 1857, Red Fort was captured by the British. 2 days later, on 21st of September, Bahadur Shah and his family members were arrested by the British. When he was captured by the British, he belted out his shayari to a British officer.
Hindiyon mein boo rahegi jab talak iman ki, takht London tak chalegi taig Hindustan ki.
Two sons of the king and his grandson were shot dead in public by Hodgson at a location today known as Huni Darwaza, near the Delhi Gate.
On the 27th of January 1858, in Red Fort, the trial of Bahadur Shah Zafar began on the charges of rebellion, treason and murder.
Zafar was convicted and exiled to Rangoon, where he breathed his last on 7th of November 1862, at the age of 83.
किसने सोचा होगा 28 सितंबर 1929 को इंदौर में दीनानाथ मंगेशकर के घर जन्मी हेमा अपने गीतों से पूरी दुनिया में सुरों का वो राग छेड़ेंगी कि ये दुनिया उनके गीतों की दीवानी हो जाएगी। हम बात कर रहे हैं भारत की कोकिला और स्वर साम्राज्ञी लता मंगेशकर की, एक ऐसी आवाज जो सितारों की चमक और चांदनी की ठंडक का अनूठा संगम है, जो आज भी हमारे दिलों में एक जादुई तार छेड़ रही है।
And Lata Mangeshkar left the world on 6 February 2022 at the age of 92. Today, on her birth anniversary, Akashvani remembers and pays tribute to her.
मेरी
The voice crowned with honorific titles like the Queen of Melody, Voice of the Millennium and Swar Kokila, Lata Mangeshkar needs no introduction. Her voice journeyed across 36 Indian languages and foreign lands, touching souls wherever it reached. Lata's musical journey began with her father's lessons, and at the age of 5, she appeared in his musical plays as an actress. In an interview to Akashvani, Lata Mangeshkar shared insights into her journey of learning music.
Pitaji ne to classical sikhaya tha, phir maine 1945 mein अमान अली खां साहब भिंडी बाजार वाले उनका गंडा बांधा था बॉम्बे में, और उसके बाद अमानत खां साहब वो देवास के थे, उनसे सीखती रही गाना के बाद मैं फिल्मों में गाना शुरू किया हमने, और मैं बहुत बिजी हो गई। फिर भी मैंने बहुत बाद में बड़े गुलाम अली खां साहब के शागिर्द थे तुलसीदास जी शर्मा, तो उनसे थोड़ा मैं सीखती रही।
In 1943, the Marathi film Gajabhau featured her debut Hindi song Mata Ek Saput Ki Duniya Badal De Tu. She sang through generations in Hindi cinema, from Nargis and Vahida Rehman to Madhuri Dixit and Preeti Zinta. Lata Mangeshkar's voice graced melodies created by renowned music directors like Anil Biswas, Naushad Ali, S.D. Barman and Salil Chaudhary, among others.
Oh,
जो शहीद हुए हैं मिलके जरा याद करो
She made history in 1974 as the first Indian playback singer to perform at London's Royal Albert Hall and was later listed in the Guinness World Records as the most recorded artist, honored with the Dada Saheb Phalke Award in 1989 and the Bharat Ratna in 2001. She also received France's highest civilian award in 2009. Artists from across the world hailed her voice as timeless, soul-stirring, and a rare gift to music. Bound by brother-sister affection, Lata Mangeshkar and actor Dilip Kumar celebrated Raksha Bandhan every year, with him praising her voice as a miraculous creation of nature.
Jiska naam, jiski izzat, jiska maan, jiska vakar, sirf Hindustan ka hi vakar nahi hai, music ka vakar hai, insaniyat ka vakar hai. And it is worldwide. Sari jagah par hai.
Ustad Bade Ghulam Ali Khan said, she is indeed Ustadon ki Ustad. Shivaji Ganeshan compared her voice to nectar, a voice that breathed life into emotions, touching hearts so deeply that even those who had never lived the feelings could still feel them through every note. Such is the timeless magic of the Nightingale of India, the eternal Lata Mangeshkar. खूबसूरत आवाज जो आज भी हमारे दिल को छू जाती है। आज पी जयराज की जयंती है। वे भारतीय सिनेमा के उन शुरुआती सितारों में से एक थे जिन्होंने अपनी अभिनय प्रतिभा और व्यक्तित्व से हिंदी फिल्मों को नई पहचान दी। वे न सिर्फ एक सफल अभिनेता थे बल्कि निर्देशक और निर्माता के रूप में भी फिल्मों में सक्रिय रहे। जयराज ने 1929 में अपने करियर की शुरुआत मूक फिल्मों से की और बाद में टॉकी फिल्मों में भी शानदार अभिनय किया। वे ऐतिहासिक और पौराणिक भूमिकाओं के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध रहे। उनकी प्रमुख फिल्में रहीं अमर सिंह राठौर, परदेसी, हातिम ताई और हमारी बात। उन्हें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार और पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। और आइए सुनते हैं उनकी फिल्म रजिया सुल्तान से ये गीत।
ढलते जाए रात, कहले दिल के बात, शम्मा परवाने का ना होगा फिर साथ, ढलते जाए रात।
And 28th September is the death anniversary of Mulk Raj Anand. He was an Indian writer in English, notable for his depiction of the lives of the poor in traditional Indian society. One of the pioneers of Indo-Anglian fiction, he, together with R.K. Narayan, Ahmed Ali and Raja Rao, was one of the first India-based writers in English to gain an international readership. Anand is admired for his novels and short stories, which have acquired the status of classics of modern Indian English literature. They are noted for their perceptive insight into the lives of the oppressed and for their analysis of impoverishment, exploitation and misfortune. Untouchable, The Sword and the Sickle, The Village, Across the Black Waters, Coolie and The Private Life of an Indian Prince are a few of his notable works. Today is also the death anniversary of Louis Pasteur. He was a French biologist, microbiologist and chemist renowned for his discoveries of the principles of vaccination, microbial fermentation and pasteurization.
और आज ही अभिनेता रणबीर कपूर का भी जन्मदिन है। आइए सुनते हैं उनकी फिल्म का ये गीत।
जब से तेरे नैना मेरे नैनों से लागे रे, तब से दीवाना हुआ, सबसे बेगाना हुआ।
और श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का, तो इजाजत दीजिए आकर्षिता और रेशमा को परिक्रमा कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करने की।
नमस्कार, नमस्कार।